लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो अंधकार में रहना पसंद करता हो। ठीक इसके विपरीत, हम सभी ज्योति या प्रकाश को पसंद करते हैं। अतः स्वयं यीशु ख्रिस्त हमें ज्योति की संतान कहते हैं और स्वयं ज्योति बनकर हमें ज्योति के मार्ग अनंत जीवन में चलने को इस धरती पर आते हैं। मुक्तिदाता यीशु हमें इस तरह अपने पीछे चलने का निमंत्रण देते हुए कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। श्रोताओ, वर्ष के तीसरे सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन पाठ में हमारे लिए उसी अंधकार और ज्योति का जिक्र है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन में ख्रिस्त की ज्योति को देखने का प्रयास करें, जिससे हम उस सच्ची ज्योति का अनुसरण करते हुए दूसरों के लिए भी ज्योति का कारण बन सकें, जिसके लिए प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं।
ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तो वह गलीलिया चले गए। वह नाजरेत नगर छोड़कर जबुलोन और नापताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसाईस का यह कथन पूरा हुआ, जबुलोन प्रांत, नापतली प्रांत, समुद्र के पथ पर यर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता था और उसके भाई अंद्रेयस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे।
श्रोताओ, ईश वचन जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे मन और दिल में ख्रिस्त की ज्योति प्रज्वलित करे, जिससे हम अपने जीवन के अंधकार से मुक्त होकर प्रभु के प्रकाश में अग्रसर हो सकें। नबी इसाईस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए जबुलोन और नेफ्ताली प्रांत में ख्रिस्त की ज्योति उदित होने की बात कहती है। यूदा के ये दो उत्तरी प्रांत सीरियाई आक्रमण के उपरांत गुलामी की स्थिति से गुजर रहे थे। गुलामी के दौरान उनके ऊपर अत्याचार का जुआ लदा हुआ था और वे विपत्तियों की स्थिति में अंधकार में थे। उनका सारा जीवन अंधकार में था और ऐसी परिस्थिति में वे जीवन की ज्योति एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे। नबी इसायस ऐसी परिस्थिति में जबुलोन और नेफ्ताली प्रांत के लोगों हेतु आनंद का सुसमाचार लाते हैं कि मुक्तिदाता की ज्योति उन पर उदित होगी और वे उस ज्योति में आनंद, खुशी और शांति का एहसास करेंगे। मुक्तिदाता ईश्वर उनके बीच से सारे दुख तकलीफों को दूर करेंगे। श्रोताओ, वहीं संत पौलुस द्वारा कुरिन्थियों के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए मानव जीवन में व्याप्त अंधकार के कारणों पर प्रकाश डालता है। मानवीय जीवन के दुख, मुसीबतों और तकलीफ रूपी अंधकार का कारण मानव समाज में व्याप्त टूटापन है। यह टूटापन और विखराव की स्थिति हमारे पाप के कारण उत्पन्न होती है, जो ख्रिस्त की ज्योति को, जिसके कारण हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, उस सुखद अनुभूति का एहसास करने से हमें वंचित कर देती है। वहीं मानवीय जीवन में पाप का कारण हम स्वार्थ को पाते हैं। कुरिन्थ का ख्रिस्तीय समुदाय अपने में विखंडित है, जहां हम विश्वासियों को अलग अलग खेमे से संयुक्त करते हुए सुनते हैं। कोई अपने को पौलुस का, तो कोई अपने को केफस का और कोई अपने को अपोलुस का कहता है। हम प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय के बीच एकता की कमी को पाते हैं। श्रोताओ, हमारे जीवन में विभाजन की स्थिति तब आती है जब हम अपने स्वार्थ में, अपने अहम के कारण दूसरों को सुनने और दूसरों के साथ वार्ता में प्रवेश करने की चाह नहीं रखते हैं। यह हममें नम्रता और दीनता की कमी को दिखलाती है। यह हममें व्याप्त पापमय स्थिति को व्यक्त करता है, जहां हम एकता में रहने की अपेक्षा अपने को दूसरों से अलग थलग रखने की कोशिश करते हैं। आज का सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के प्रेरिताई कार्य का जिक्र करता है, जहां वे योहन बपतिस्ता की गिरफ्तारी उपरांत अपने पिता के कार्यों की शुरुआत जबुलोन और नेफ्ताली प्रांत से करते हैं। वे हमें पश्चाताप का आह्वान करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु का पश्चाताप हेतु आह्वान करने का अर्थ हमारे लिए यही है कि वे हमें पिता के साथ संयुक्त करने की चाह रखते हैं। वे हमें प्रेम की एकता में संयुक्त करने हेतु आते हैं। श्रोताओ, पाप हमें एक होने नहीं देता है। पाप के कारण हम एकता में रहने के बदले अलग अलग रहने की सोचते हैं, और जब हम अकेले अकेले रहते तो हम अंधकार में ही भटकते रहते हैं। पिता ईश्वर बेटे यीशु ख्रिस्त में हमें प्रेम रूपी एकता के सूत्र में एक करने की चाह रखते हैं, जैसे स्वयं त्रित्व में ईश्वर की एकता है। इस एकता की शुरुआत हमारे लिए तब होती है जब हम अपने को पापों से मुक्त करते हैं। अतः यीशु मुक्तिदाता ईश्वर हमारे लिए पश्चाताप का संदेश लेकर आते हैं। वे हमें अपने पुराने स्वभाव का परित्याग कर नए स्वभाव को धारण करने का निमंत्रण देते हैं। इस भांति अपने पापों के लिए पश्चाताप करना हमें यीशु ख्रिस्त के नए स्वभाव में शामिल करता है, जिसके द्वारा हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की ज्योति को अपने में जगमगाता हुआ पाते हैं। यीशु ख्रिस्त की ज्योति सदा हम सबों के लिए व्याप्त है, जो हमें पाप रूपी अंधकार से मुक्त करती है और आनंदमय ज्योति प्रदान करती है। लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों को कैसे सुनती और उनका प्रतिउत्तर कैसे देते हैं। चेलों ने यीशु की बातों को सुना और तुरंत उनके पीछे हो लिए। आइए हम ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपनी ज्योति से भर दे, जिससे हम भी उनके आह्वान का प्रतिउत्तर अतिशीघ्र देते हुए दुनिया के लिए मुक्ति की ज्योति बन सकें।
हम तो जलते दीप हैं, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल
रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने ब्रूमान दिन होमे त्रासदी के पहले बरसे पर 25 जनवरी को एक वीडियो संदेश प्रेषित कर त्रासदी के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना का आह्वान किया। गत साल 25 जनवरी 2019 को कीचड़ और कचरे से भरे बाढ़ ने ब्राजील के ब्रूमान दिनहो शहर के कुछ भाग और खान उद्योग को तबाह कर दिया था। त्रासदी में करीब 272 लोगों की मौत हो गई थी। संत पापा ने संदेश में कहा, ब्रूमान दिनहो त्रासदी की पहले बरसे पर आइए हम उन 272 भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इसमें दफन हो गए थे। हम पूरी बासिन नदी के प्रदूषित होने पर खेद प्रकट करते हैं। हम इसके शिकार लोगों के परिवार वालों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। वहां के महादम आदर्श का समर्थन करते हुए संत पापा ने पीड़ितों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आह्वान किया। संत पापा ने संत पॉलस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना की कि ईश्वर हमारे आम घर को सुधारे और उसकी रक्षा करे। आयरलैंड स्थित तुआम के महाधर्मदर्श मिखाइल न्यारी ने ईश्वचन रविवार के उद्घाटन में राष्ट्रीय नोक मरियम तीर्थ की सहभागिता के बारे बतलाया। 26 जनवरी को ईश्वचन रविवार मनाया जाएगा, जिसको ईश्वचन के पाठ एवं प्रसार को समर्पित किया गया है। इसका उद्घाटन करते हुए संत पापा फ्रांसिस विश्वासियों के साथ समारोह क्रिस्टाक अर्पित करेंगे और मिस्सा के उपरांत वे विश्वासियों को पौत्र बाइबल भी प्रदान करेंगे। ईश्वचन रविवार में सहभागी होने के लिए आयरलैंड के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल में विश्वासी संत पापा फ्रांसिस के क्रिस्त्याग में भाग लेंगे, जो संत पेट्रस महागिरजा घर में संपन्न होगा। रविवार समारोह के दौरान नोक तीर्थ स्थल की प्रतिमा को प्रस्तुत की जाएगी, जिसको दिव्य दर्शन की 140वीं वर्षगांठ मनाने हेतु तैयार की गई थी। प्रतिमा की आशीष रोम में संत पापा फ्रांसिस ने पिछले साल की थी। इसके पूर्व 2018 में उन्होंने परिवार पर विश्व सभा के दौरान नोक तीर्थ स्थल का दर्शन किया था। दिव्य दर्शन की कहानी अत्यंत रोचक है। 21 अगस्त 1889 को नोक गांव के करीब 15 लोगों ने बारिश के बीच पल्ली के जघर में विशाल दीवार पर 2 घंटों तक माता मरियम, संत योसेफ, संत योहन सुसमाचार लेखक, एक मेमना और वेदी पर एक क्रूस का दिव्य दर्शन देखा था। दिव्य दर्शन की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परमधम पीठ समिति के अध्यक्ष महाधर्मदर्श रिनोफी से किल्ला ने नोक में चल रहे नौबिना प्रार्थना में भाग ले रहे विश्वासियों को संबोधित कर उन्हें ईश्वचन रविवार के उद्घाटन में विशेष रूप से निमंत्रण दिया था। नोक तीर्थस्थल आयरलैंड के पश्चिम में तुआम महाधर्म प्रांत में स्थित है, जो देश का सबसे बड़ा धर्म प्रांत है। महाधा मदश न्यारी ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने जोर दिया है कि ईश वचन को कुछ सीमित लोगों तक ही रखा नहीं जा सकता, यह सभी लोगों के लिए है। उन्होंने बतलाया कि नोकपल्ली के अनेक विश्वासी इस समारोह में भाग लेने रोम आ रहे हैं। महाधा मदश के अनुसार इस अवसर पर वहां के लोगों में काफी उत्साह है और ख्रिस्ते एकता हेतु प्रार्थना सप्ताह का समापन 25 जनवरी की शाम को संत पापा फ्रांसिस रोम स्थित संत पॉलस महागिरजा घर में संध्या प्रार्थना के द्वारा करेंगे, जहां अप्रवासियों की विशेष याद की जाएगी।
संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 24 जनवरी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री मिखाइल रिचर्ड पेंस के साथ वाटिकन में मुलाकात की। बैठक के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने उपराष्ट्रपति पेंस को अपनी विश्व शांति दिवस संदेश की एक प्रति सौंपी। अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने शांति का निर्माण करने में मदद करने और एक न्यायपूर्ण सहायक और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए हमें आमंत्रित किया है, क्योंकि आज भी युद्ध के परिणाम विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को प्रभावित करते हैं। संत पापा से मिलने के बाद उपराष्ट्रपति माइकल पेंस ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन और वाटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पोल रिचर्ड गल्लाघेर के साथ मुलाकात की। उधर यरूशलेम में पद वाशेम होलोकोस्ट मेमोरियल में गुरुवार को 5वें विश्व होलोकोस्ट मंच का आयोजन किया गया। पोलैंड के नाजी आश्विस प्रताड़ना शिविर से मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के 40 से अधिक राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और शाही परिवारों ने भाग लिया। इस समारोह में वाटिकन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने हेतु गठित परम धर्म पीठीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल कूट कोर्च ने किया। कार्डिनल कोच ने वाटिकन न्यूज के साथ साक्षात्कार में 23 जनवरी को यरूशलेम में हुए समारोह के महत्व को समझाते हुए कहा, मेरा मानना है कि अनेक देशों के इतने सारे प्रतिनिधियों का एक साथ आना और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यहूदी विरोध के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजना था। उन्होंने कहा, कई भाषणों में स्पष्ट कहा गया कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। यहूदी विरोध एक ऐसा अध्याय नहीं है जिसे इतिहास की किताबों में संजोया गया हो, बल्कि आज भी यह फिर से उभर रहा है, जिसे हमें गंभीरता से लेना होगा। कार्डिनल ने यहूदी विरोधी कारणों के बारे में कहा, कई कारण है कि लोग विदेशियों से या दूसरों से डरते हैं, क्योंकि वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं और इसलिए यह यहूदियों को हस्तांतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रवाद, जो खुद को एक राष्ट्रवादी के रूप में व्यक्त करता है, राष्ट्रीयता का यह नया स्वरूप यहूदी विरोधी तरीका है। उन्होंने कहा कि भले ही इसके कारण एक देश से दूसरे देश में अलग अलग हों, लेकिन राष्ट्रवाद और लोक लुभावनवाद इसके प्रमुख कारण हैं। कार्डिनल ने कहा कि इन प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए लोगों की आशंकाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें दूर करने में मदद करनी चाहिए। कार्डिनल ने कहा, हम खुद को दूसरों के लिए खोलकर विश्वास में दूसरे लोगों के प्रति भय की आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। उधर पेरू धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष मिगुएल कैबरे होस ने शुक्रवार 24 जनवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का दौरा किया और बहुत गंभीर स्थिति में भर्ती 8 बच्चों से मुलाकात की, जो पिछले गुरुवार सुबह विल्ला एल साल्वाडोर के लिए गैस ले जाने वाले एक टैंकर के विस्फोट के शिकार हो गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।